नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। सभी अपने सेलफोन साइलेंट पर कर दीजिए इसी वक्त। तो आज का हमारा तीसरे अध्याय का अंतिम निर्णायक गीतामृत का सेशन रहेगा, तीसरे अध्याय का। ये अध्याय जो हमने प्रारंभ किया मेरे ख्याल कुछ एक डेढ़ साल पहले, और कितने श्लोक इस अध्याय के? 43। बच्चों उनको भी साइलेंट कीजिए। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम केवल संक्षिप्त रूप में पूरे तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को क्या शिक्षा दी, रिकैप जिसको कहते हैं, समरी। तो कई भक्त ये सुझाव दे रहे थे कि क्यों ना सबका एग्जाम लिया जाए। तो मैंने सोचा कि कलयुग है, सबसे पहले भौतिक संसार है, कलयुग है, और कलयुग की विशेषता बताई गई है, प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलावस्मिन युगे जन मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रिता, कि स्मृति हमारी धीरे धीरे मंद होती जाती है। और छुट्टियों का मौसम चल रहा है ना, छुट्टियां चल रही है स्कूल कॉलेजेस की, और आज की छुट्टी है क्रिसमस की। तो छुट्टियों के मौसम में एग्जाम वगैरह की चिंता में मैं नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि हम केवल संक्षिप्त रूप में श्रवण कर लेंगे एक सेशन में पूरा तीसरा अध्याय। आज क्या रहेगा जो हम डेढ़ साल से ये पूरा तीसरा अध्याय समझने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम कोशिश करेंगे एक सेशन में पूरा तीसरा अध्याय। तो प्रथम अध्याय में भगवान ने अर्जुन का विषाद देखा, इसलिए प्रथम अध्याय का शीर्षक है अर्जुन विषाद योग। और अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को अपने सामने खड़ा पाया, उनको देखकर अर्जुन के अंदर विषाद आया, और उस विषाद के वजह से अर्जुन योग में स्थित हुए। तो प्रथम अध्याय ये दर्शा रहा है कि यदि इस भौतिक संसार में हम विषाद में भी क्यों ना चले जाएं, अर्जुन की तरह जब दुविधा मन स्थिति होती है हमारी, हमारे ही सगे संबंधियों के साथ हमें युद्ध करना है। आप प्रश्न पूछ रहे होंगे कि भाई आप कौन से सगे संबंधियों की बात कर रहे हैं? हमारे हृदय के अनर्थ, हमारे हृदय में ही दुशासन, दुर्योधन, कर्ण ये सब विराजमान हैं, और ये हमारे संगी बने हुए हैं, हमारे रिश्तेदार बने हुए हैं। तो हमें इनका सामना, आमना सामना इनके साथ हर क्षण होता है। तो हमारे लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि हर क्षण है मौजूद। तो विषाद, इसलिए दुविधा मन स्थिति के वजह से जीव विषाद में जाता है। और विषाद यदि भगवान श्री कृष्ण के निरीक्षण में हो तब वो योग में परिणित होता है, नहीं तो केवल विषाद रह जाएगा। तो क्योंकि अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर भगवान श्री कृष्ण को दे रखी थी, इसलिए अर्जुन के लिए जो सबसे अनुकूल स्थिति थी, प्रतिकूल में सबसे अनुकूल स्थिति अर्जुन की बन गई कि विषाद के साथ योग, भगवान का योग मिला अर्जुन को। तो यह है प्रथम अध्याय, और हमारे जीवन की शुरुआत भी भगवद गीता के इसी प्रथम अध्याय की श्रृंखला से शुरू होती है। तो हमारा जीवन और भगवद गीता जिस श्रृंखला में बढ़ती है उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। अब दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को संक्षिप्त रूप में पूरे भगवद गीता का जो निचोड़ है वो देने का प्रयास किया। इसे श्री प्रभुपाद ने दूसरे अध्याय का शीर्षक दिया है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, अर्थात पूरे भगवद गीता का समन्वय उस दूसरे अध्याय में, क्योंकि भगवान इस अपेक्षा में थे कि अर्जुन ने ये जो विषाद व्यक्त किया है कि मुझे अपने रिश्तेदारों को मारना चाहिए कि नहीं, तो भगवान ने सोचा कि कुछ श्लोकों से मैं अर्जुन के इस शंका का निवारण कर दूंगा और फिर अर्जुन गांडीव उठाकर युद्ध करना प्रारंभ कर देंगे। भगवान कोई पावर पॉइंट बनाकर नहीं लाए थे पूरे 18 अध्याय का। तब फिर अर्जुन ने धीरे धीरे जो भगवान के मुख से वाणी सुनी, जो अर्जुन ने आज तक कभी सुनी नहीं थी, इस प्रकार का ज्ञान भगवान के मुखारविंद से अर्जुन ने आज तक कभी सुना नहीं था, तो अर्जुन के मन में और जानने की जिज्ञासा होने लगी, और इस और जानने की उत्कंठा जिज्ञासा के वजह से दूसरा अध्याय बढ़ते बढ़ते तीसरे अध्याय तक पहुंचा, जहां पर दूसरे अध्याय में तो भगवान ने सांख्य योग का दर्शन दिया कि कैसे शरीर नहीं हम आत्मा हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदार ये भी आत्मा हैं, तुम किसका वध करोगे, इनका शरीर तो मरा हुआ है, हम सब का शरीर मरा हुआ है, केवल आत्मा अजर अमर है। तो ये सब सुनने के पश्चात अर्जुन के मन में विरक्ति आ गई, क्योंकि जब हमें ये बोल दे कोई, जयदेव महाराज एक उनका एक प्रसंग बता रहे थे, न्यूयॉर्क की रथ यात्रा में वो क्वेश्चन आंसर्स बूथ में बैठे हुए थे, तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जहां संपन्न हुई बड़ा पंडाल लगाया हुआ था और वहां क्वेश्चन आंसर्स बूथ, तो कोई भी आकर कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो जयद्वैत महाराज कुछ वहां के अमरीकी युवकों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे माइक्रोफोन पर, तो दो बहुत ही मोटी महिलाएं प्रवेश की उस क्वेश्चन आंसर बूथ में, और वो अमेरिका की बहुत मोटी, इतनी मोटी थी कि दो आंखों में भी वो कैमरे में फिट नहीं हो सकते, वो बता रहे थे। तो उन्होंने प्रवेश किया, कुछ प्रश्न पूछने के लिए देखा क्वेश्चन आंसर बूथ है, और जैसे ही प्रवेश किया तो जयद्वैत महाराज माइक्रोफोन पर इनको कुछ भगवद गीता के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने माइक्रोफोन पर एक लाइन कह दी, सो वी आर नॉट दिस बॉडी फाइनली। तो जैसे इन दो मोटी महिलाओं ने ये लाइन सुनी, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, व्हाट अ रिलीफ। और ये सच बात है कि जितनी जद्दोजहद हम कर रहे हैं इस भौतिक संसार में, चाहे कोई मोटा हो, चाहे कोई पतला हो, चाहे कोई बीच का हो, सब लगे हुए हैं क्योंकि अपने आप को हम ये शरीर मान रहे हैं, और जब तक हम अपने आप को ये शरीर मानते रहेंगे तब तक ये शरीर से संबंधित जितनी परेशानियां जितनी कठिनाइयां हैं वो जुड़ी रहेंगी। चाहे हमारे पास कितनी भी संपत्ति धन दौलत आ जाए, कितने भी बड़े डॉक्टर के पास हम चले जाएं, या सुख शांति हर प्रकार से हम उसका प्रयोजन कर रखें, परंतु ये शरीर बाय डिफॉल्ट बनाया हुआ है इस प्रकार से कि ये कहीं ना कहीं हमको परेशानी कठिनाई देता रहेगा हर क्षण, पैदा होने से मरते दम तक, और उसके बाद फिर से जन्म, फिर से मरते दम तक। तो ये जो अर्जुन ने सुना कि मैं शरीर ही नहीं हूं, तो शरीर युद्ध जीतने वाला अर्जुन को लग रहा था कि मेरा शरीर युद्ध जीतेगा, इनके शरीर युद्ध हारेंगे, मेरा शरीर युद्ध जीत के हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बैठेगा। और यहां पर भगवान ने जड़ से उखाड़कर फेंक दिया कि तुम शरीर ही नहीं हो। तो फिर अर्जुन, स्वाभाविक अर्जुन का प्रश्न या किसी का भी प्रश्न हो सकता है कि यदि मैं शरीर ही नहीं हूं तो फिर जो भी मैं कुछ कर रहा हूं किस लिए, क्यों करूं, किसके लिए करूं। तो अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक था, और अर्जुन ने फिर उस प्रश्न को लेते हुए भगवान से और ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की, और तब शुरुआत तीसरे अध्याय की, कर्म योग, कि शरीर से आप कर्म कर रहे हो तो विषाद से अर्जुन भगवान से जुड़े। भगवान से जो भी जुड़ता है किसी न किसी प्रकार से, चाहे जैसे कहते हैं ये न के न प्रकारेण, यदि भगवान से कोई जुड़ जाए तो उसको योग कहते हैं। तो प्रथम अध्याय में विषाद से, अब तीसरे अध्याय में भगवान ने, तीसरे अध्याय का शीर्षक कर्म योग, तो विषाद से अर्जुन जुड़े इसलिए विषाद योग। भगवान इस अध्याय में अर्जुन को बताए हैं कि कर्मों के द्वारा कैसे तुम मुझसे जुड़ो, और अर्जुन के लिए कौन से कर्म, फिलहाल गांडीव उठाओ युद्ध करो, फिलहाल अर्जुन का वो कर्म, वो स्वधर्म। तो इसलिए ये बहुत सरल है समझना, ये मैं प्रथम अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, इसका कनेक्शन आपको मैं बता रहा हूं। तो इसका जो शीर्षक है वो बहुत सरल है समझना कि भगवान ये अर्जुन को सुनाना चाह रहे थे, इसलिए इस अध्याय का शीर्षक है कर्म योग। तो अब हम पहले पूरे अध्याय का विभाजन कर समझेंगे कि जो 43 श्लोक इस पूरे अध्याय के, कितने श्लोक, 43 श्लोक, तो उनका विभाजन हम करेंगे, और उनको हमने एक हेडिंग दिया है ताकि हमको याद रहे कि हां ये श्लोक संख्या से ये श्लोक संख्या क्या टॉपिक था, ये श्लोक संख्या से ये श्लोक संख्या क्या टॉपिक था। तो 3.1 3.2 ये दो श्लोक यदि आपको याद है तो प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि अर्जुन ने इन दो श्लोकों में प्रश्न पूछा था। अर्जुन ने इन दो श्लोकों में प्रश्न पूछा कि भगवान आप वैराग्य के बारे में मुझे बताए दूसरे अध्याय में कि शरीर नहीं हम आत्मा है, तो फिर वैराग्य हो गया ना, पूरे शरीर से विरक्ति आपने दिला दी, पूरे शरीर से विरक्ति ले जाने के पश्चात फिर आप मेरी ओर इस आशा से क्यों देख रहे हो कि मैं अब कर्म करूं। कर्म तो शरीर करता है। तो अर्जुन का प्रश्न, रनन्सिएशन और वर्क, ठीक ठीक बताओ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, क्या करना है मुझे। तो इसका इलैबोरेशन इस प्रकार से है, अर्जुन इंक्वायर्स वेदर इट इज बेटर टू बी सिचुएटेड इन नॉलेज और टू वर्क। अब देखिए, ये जो अर्जुन का प्रश्न है ये बहुत जायज प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न अर्जुन बहुत बुद्धिमानी से प्रश्न पूछे हैं कि दोनों में क्या श्रेष्ठ है, या दोनों में विरोधाभास है क्या। संक्षिप्त रूप में यदि इन दो श्लोकों को हम लें तो अर्जुन ने यह भगवान से पूछा कि भगवान इनमें विरोधाभास मुझे दिखाई दे रहा है, कर्म में और वैराग्य में। जैसे अधिकांश लोग जब हमको इस कपड़ों में देखते हैं तो पूछते हैं, तो आपने तो फिर अब छोड़ दिया ना, मतलब कुछ नहीं ना अभी, तो क्या। तो तुरंत जब कोई वैराग्य का लक्षण दिखाई देता है किसी को, तो तुरंत मन में क्या विचार आते हैं, क्या प्रश्न आते हैं, इसने तो छोड़ दिया, अब क्या, न घर परिवार, न बीवी बच्चे, न नौकरी, क्या है फिर, मतलब करते क्या हो, उनको ये चिंता रहे, करते क्या हो, दिन भर करते क्या हो। तो अर्जुन ने ये जो प्रश्न पूछा, तो यहां पूरे तीसरे अध्याय की बुनियाद है ये दो श्लोक। हमें ये जो सबसे पहला सेक्शन है, पहले दो श्लोकों का सेक्शन, ये हमें किस प्रकार से समझना है कि तीसरे अध्याय की बुनियाद को यदि पूछे कि भगवान ने ये कर्म योग सुनाना क्यों शुरू किया, मैं ही पूछ लूं यदि चौथे अध्याय में आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि बुनियाद क्या, अर्जुन के ये प्रश्न पहले दो श्लोकों में। फिर 3.3 से 3.9 भगवान ने अब उत्तर प्रारंभ किया, और उत्तर में भगवान ने निष्काम कर्म योग, ये एक नया टर्म यूज किया अर्जुन के सामने। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में केवल सांख्य योग सुना था। सांख्य योग का अर्थ क्या है कि एकदम विश्लेषण कर गणना कर ये समझ लेना कि भौतिक संसार और मैं, जड़ और चेतन अलग। अब यहां पर भगवान ने एक नया कॉन्सेप्ट सुनाया, निष्काम कर्म योग। कर्म करो, योग में स्थित होकर कर्म करो, बिना कामना के निष्काम होकर कर्म करो। तो ये जो भगवान का प्रस्ताव, काफी एक रेवोल्यूशनरी प्रस्ताव था। लॉर्ड कृष्णा रिकमेंड्स निष्काम कर्म योग बाय ऑफरिंग द फ्रूट्स ऑफ वन्स वर्क टू लॉर्ड विष्णु। इट अलाउज द सोल टू बी प्यूरिफाइड थ्रू डिटैच्ड एक्टिविटीज। भगवान ने इस प्रस्ताव के साथ अर्जुन को यह समझाया कि अर्जुन, तुम ये मत समझो कि कर्म करने से तुम प्रदूषित हो जाओगे। अर्जुन यही कह रहे थे कि मैं प्रदूषित चेतना में युद्ध कर रहा हूं, कि मुझे एक साम्राज्य चाहिए, उसके लिए मैं अपने रिश्तेदारों को मार रहा हूं, और उनको मैं मार दूंगा तो उनकी जो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी वो प्रदूषित हो जाएंगी, मेरे प्रदूषित इस विचार के वजह से वो प्रदूषित हो जाएंगी, तो फिर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि एक ऐसा मार्ग है अर्जुन, जहां पर तुम कर्म करते हुए भी शुद्ध रहोगे। एक ऐसा मार्ग है जहां पर वो कर्म तुम्हारे तुम्हें प्रदूषित नहीं कर पाएंगे। कौन सा? निष्काम कर्म योग, वो मार्ग है निष्काम कर्म योग का। तो 3.3 से 3.9 भगवान ने निष्काम कर्म योग की व्याख्या अर्जुन को की। अगला सेक्शन 3.10 टू 3.16 भगवान ने सोचा कि हो सकता है कि कई ऐसे हों, विशेष रूप से कलयुग में, द्वापर युग में भगवान हमारे बारे में सोच रहे थे कि कई ऐसे होंगे जो निष्काम कर्म योग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए निष्काम कर्म योग बहुत मुश्किल होगा। तो भगवान ने थोड़ा और कृपा करते हुए भगवान ने कह दिया कि यदि कोई कर्मकांड भी कर रहा है, कर्मकांड का अर्थ क्या है कि कामना के साथ किया हुआ कर्म, सकाम कर्म। पिछले सेक्शन में भगवान ने निष्काम कर्म के विषय में कहा, जैसे कई बार होता ना, एक डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, स्पेशली आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं वो तुरंत बहुत कठिन पथ्य लिख कर देते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, या है ना इतनी जल्दी उठना, इतनी जल्दी सोना, ये सब। तो यदि वो डॉक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है, उसने सब लिख दिया ये सब नहीं करना, और पेशेंट एकदम ऐसे देख रहा है कि डॉक्टर आप सेकेंड विजिट में नहीं आऊंगा, तो डॉक्टर भी सोचता है कि भाई ये आने नहीं वाला है, ठीक है। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है ठीक है, ये इतना चले, इतना सही लेना, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, इतना सही। लेकिन डॉक्टर ये भी नहीं फॉलो हो सकता, अच्छा ये भी नहीं फॉलो हो सकता, तो फिर डॉक्टर को जो उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव देता है। तो यहां पर भगवान भी हमारी स्थिति को देखते हुए थोड़ा ब्रॉड हार्टेड बन रहे हैं, ब्रॉड हार्टेड, कि ठीक है यदि निष्काम कर्मयोग बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया तो कर्मकांड से शुरू करो। तो भगवान ने 3.10 से 3.16 कर्मकांड टू कर्मयोग कैसे पहुंचता है कोई, हालांकि अर्जुन तो ऑलरेडी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परंतु अर्जुन कर्मकांडियों के बिहाफ पर, उनकी ओर से अर्जुन इस प्रकार से पेश आ रहे थे कि भगवान ने अब कर्मकांड से कर्मयोग तक कोई कैसे पहुंच सकता है। कर्मकांड का अर्थ है कि जैसे देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं और वो पूजा कामना के साथ होती है, चाहे वो कोई उनका व्रत हो, श्रावण मास हो, चाहे नवरात्र हो, कि हाँ भाई ये मिल जाए, वो मिल जाए, सब कुछ ठीक रहे, कोई गड़बड़ ना हो, तो उसको कहते हैं सकामना, सकाम से कामना से किया हुआ कर्म। तो इसमें भगवान कहते हैं इफ वन कैनॉट परफॉर्म डिटैच ड्यूटिफुल वर्क देन इट इज बेटर टू फॉलो द कर्मकांड सेक्शन ऑफ द वेदास एंड ग्रेजुअली राइज टू परफॉर्मिंग कर्म योग। तो कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, चाहे वो देवताओं का उपासक भी क्यों ना हो, वो नहीं कह सकता कि भगवत गीता मेरे लिए नहीं है। भगवान ने किसी को भी अपने दायरे से बाहर जाने का मौका नहीं दिया है। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि कई बार लोग निष्काम कर्म योग नहीं पालन कर सकते तो वो नास्तिक बन जाते। तो यहां भगवान नास्तिकवाद और निष्काम कर्मयोग के बीच में एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि ठीक है तुम अगर तुम नास्तिक मत बनो, कम से कम वहां से शुरुआत करो कामना के साथ, परंतु इस वैदिक स्कूल में भर्ती होकर रहो, यहां से बहिष्कृत मत हो जाओ, स्कूल से सस्पेंड मत हो जाओ। तो यह भगवान का विचार 3.10 से 3.16। अब 3.17 से 3.35 भगवान ने जो थोड़े बहुत निष्काम कर्म कर पाएंगे उनका इफेक्ट क्या होगा सोसाइटी में, क्योंकि अर्जुन यहां पर कौन है, अर्जुन एक श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ, उसकी व्याख्या हमने की थी। ये सब हम संक्षिप्त रूप में फिर से जैसे क्रिकेट के हाइलाइट्स होते हैं ना, तो हमारे पूरे तीसरे अध्याय के कुछ स्निपेट्स हाइलाइट्स दिखाएंगे आपको, तो थोड़ा थोड़ा याद आएगा कि हाँ अच्छा अच्छा ये श्लोक में ये बोला गया था। तो यहां पर अर्जुन एक श्रेष्ठ हैं और भगवान ने अर्जुन को श्रेष्ठ कहते हुए ये कहा कि अर्जुन यदि तुम निष्काम कर्म योगी बन जाओगे तो जो तुम्हारा पालन करेंगे वो धीरे धीरे निष्काम कर्म योगी बनेंगे। तो भगवान अर्जुन के द्वारा जो श्रेष्ठ हैं उनको आह्वान कर रहे हैं कि कैसे वो निष्काम कर्म योगी बने, ताकि जन साधारण भी धीरे धीरे कर्मकांडी विचार से निष्काम कर्म योगी बने। तो ये सेक्शन में भगवान ने कहा, ड्यूटीफुली एक्टिंग विदाउट अटैचमेंट सेट्स द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर अदर्स हु बीइंग लेस एडवांस्ड नीड द प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड शास्त्रिक ड्यूटीज। कि हम सबको कोई ना कोई श्रेष्ठ चाहिए जिसका हम आदर्श सामने रखते हुए पालन करें उनका। तो भगवान यहां पर अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम आदर्श स्थापित करो, ये युद्ध कर, परंतु कैसे युद्ध कर, निष्काम भाव से युद्ध कर एक आदर्श स्थापित करो, और अर्जुन ने किया। और फिर अंतिम जो सेक्शन इस तीसरे अध्याय का, बीवेयर ऑफ लस्ट एंड एंगर। तो ये प्रश्न अचानक उठ रहा होगा कि भगवान अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न के जवाब में भगवान ने निष्काम कर्मियों के विषय में बताए तो समझ गए, फिर भगवान कर्मकांड के विषय में बताए वो भी समझ गए, फिर भगवान ने कहा कि निष्काम कर्म योगी जो होते हैं उनका इफेक्ट क्या होता है समाज में ये भी समझ गए। ये अचानक भगवान काम वासना को बीच में क्यों ले आए? भगवान ये जो लास्ट सेक्शन है, ये लास्ट सेक्शन भगवान ने क्यों शुरू किया? ओके और कुछ याद आ रहा है यार? ओके पार्शियली यू आर राइट। हाँ अर्जुन ने सवाल किया था, अर्जुन ने क्या सवाल किया था? अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। अर्जुन का सवाल यह था कि मैं यदि निष्काम कर्म योग भी करने जाऊं तो पता नहीं मेरे अंदर एक कौन सी बलवान शक्ति है जो मुझे पाप करने के लिए प्रेरित करती है कई बार, तो वो शक्ति कौन सी है? निष्काम कर्म तो बहुत दूर की बात अर्जुन पूछ रहे हैं, मुझे तो पाप करने के लिए कोई शक्ति प्रेरित करती रहती। तो ये जो प्रश्न अर्जुन ने पूछा यहां पर, ये सेक्शन जो है, ये पूरा सेक्शन हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि ये पूरा सेक्शन है लस्ट और एंगर के विषय में। भगवान ने बताया काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, और ये 36 से 43 भगवान इसमें बता रहे हैं कि जो मैंने निष्काम कर्म के बारे में बताया, जो मैंने कर्मकांड के विषय में बताया, उन सब में बाधा कौन डाल सकता है? काम क्रोध। तो कनेक्शन क्या है ये लास्ट सेक्शन का, कि जो प्रिंसिपल्स भगवान ने बताए उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में जो बाधाएं आएंगी वो उन बाधाओं का विवरण भी भगवान ने दिया। और अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा उसको भी अपने जवाब से उसको कनेक्ट करते हुए भगवान ने पूरा ये जो तीसरा अध्याय है इस प्रकार से संपन्न किया। तो अब हम एक पूरा ओवरव्यू, अभी शॉर्ट रिकैप, एक एक जो हेड्स उसका, अब थोड़े से अलग लैंग्वेज में मैंने इसको प्रस्तुत किया है कि जो जो सेक्शंस हमने अभी लिए, कितने सेक्शंस हुए? 5 श्लोकों के विभाजन के अनुसार इस तीसरे अध्याय के 5 सेक्शंस हुए। तो 5 सेक्शंस में याद रखने के लिए 3.1 से 3.2 में हाईएस्ट इंटेलिजेंस ये हमें समझ में आता है अर्जुन कि बुद्धि का स्तर कितना ऊंचा है। हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी ताकि फिर हमको याद रहे। क्यों हाईएस्ट इंटेलिजेंस? हाईएस्ट इंटेलिजेंस मींस दैट इंटेलिजेंस विच नोज टू चूज बिटवीन टू राइट थिंग्स। लोअर इंटेलिजेंस मींस दैट इंटेलिजेंस विच नोज टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। बट अर्जुन इज कंसिडर्ड टू बी वन हैविंग हाइएस्ट और टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस बिकॉज ही नोज टू चूज बिटवीन टू राइट थिंग्स। फिर 3.3 से 3.9 भगवान ने आर्ट ऑफ बैलेंसिंग का सेमिनार दिया है। 3.1 से 3.2 हाईएस्ट इंटेलिजेंस क्या होता है ये समझ लें। उसके पश्चात नेक्स्ट सेक्शन में 3.3 से 3.9 पाथ ऑफ मॉडरेशन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए। पूरे भगवद गीता का निचोड़ क्या है? आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। ये 3.10 टू 3.16 ब्रॉड हार्टेडनेस ऑफ कृष्णा, कर्मकांड से कर्मयोग ध्यान में रखना। तो उसमें भगवान की उदारता दिखाई दे रही। 3.17 टू 3.35 प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप। देखो एक अध्याय में भगवान ने क्या क्या एकदम हॉट टॉपिक्स डिस्कस किए। अभी हॉटेस्ट टॉपिक आने वाला है, लस्ट एंगर। 3.36 टू 3.43 ऑब्स्टिकल्स कमिंग इन द वे व्हाइल फॉलोइंग द अबव प्रिंसिपल्स। तो अभी एक स्लाइड में पूरा ओवरव्यू है थर्ड चैप्टर का। आप लोगों को प्रश्न उठ रहा होगा कि 1.5 साल तक फिर क्यों इतना घिसा? ऐसे ही कर करके अपना 18 दिन में हो जाएगा, है ना? तो ये है पूरे चैप्टर 3 का ओवरव्यू। अब हम एक एक सेक्शन में जाकर मुख्य मुद्दे, उसके क्या क्या हमने डिस्कस किए थे वो हम लेंगे, हाइलाइट्स ऑफ ईच सेक्शन नाउ। तो लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस वर्सेस 3.1 3.2, इसके अंदर अर्जुन के इंटेलिजेंस का लेवल समझा हमने। कैसे समझ में आता है किसी के भी इंटेलिजेंस का लेवल? उसके प्रश्नों से, कि वो कौन से लेवल के प्रश्न पूछता है उससे समझ में आता है। जैसे कि आजकल के शिक्षा प्रणाली में भी आप देखो कि जब वो व्यक्ति अपने क्लासेस में स्टैंडर्ड्स में बढ़ते जाता है तो उसका क्वेश्चन पेपर कैसे समझ में आता है? क्वेश्चन पेपर से आप बता दोगे कौन से क्लास का क्वेश्चन पेपर है, है ना? मैथमेटिक्स 1+1 समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सी क्लास का क्वेश्चन पेपर होगा ये। सो इंटेलिजेंस इज एसर्टेन्ड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस पीपल आस्क। तो हमने एक एक्सरसाइज इस आईक्यू टेस्ट लिया था इसके संदर्भ में और हमने ये प्रश्न पूछा था, कैन यू टच दिस सीलिंग? यदि ये प्रश्न मैं आप लोगों को पूछूं, कैन यू टच दिस सीलिंग, क्या करोगे? यस, बट अ इंटेलिजेंट पर्सन विल आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट व्हाई बिफोर सेइंग यस, यू विल आस्क क्यों, है ना, है कि नहीं? पूछोगे कि नहीं पूछोगे कि सीधा कूदना शुरू कर दोगे? अब इसके पश्चात हमने एक और प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया था। ये कैसा प्रश्न लग रहा है आपको? वुड यू लाइक टू अर्न रुपीज 10 करोड़ इन अ वीक? ये था ट्रैप, है कि नहीं? कितना हम स्वाभाविक स्पॉन्टेनियसली बोल दिए ना, हाँ भाई बता बता, एक हफ्ते में 10 करोड़ कैसे कैसे, है ना? तुरंत बिना सोचे समझे कैसे? कभी किसी को आपने देखा सुना जो स्पॉन्टेनियसली ये प्रश्न पूछा क्यों, एक हफ्ते में 10 करोड़ क्यों? अगर कोई ये प्रश्न पूछ ले तो आप बोलोगे पागल है साला। बट अकॉर्डिंग टू भगवत गीता ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट, ही इज आस्किंग द क्वेश्चन व्हाई डू आई नीड 10 करोड़। सो मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट इज ऑलवेज हाउ एंड स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट इज फर्स्ट आस्किंग द क्वेश्चन व्हाई, नोइंग द रीजन एंड देन एक्टिंग। मतलब इसमें जैसे कि अगर मैं आपको एक देसी एग्जाम्पल दूं, अब मदारी का खेल देखा होगा आपने, है ना? तो मदारी के खेल में वो डमरू बजाते, डमरू बजाते बोला जमोरे कूद के दिखा, जमुरे कूद के दिखा। जमुरा कौन है? जमुरे कूद के दिखा। तो जमुरा कूदता है यहां वहां, कभी वो रिंग के अंदर से, कभी वो लकड़ी के ऊपर से, ये वो कभी नहीं पूछता क्यों। जमुरा कभी पूछता है क्यों, क्यों नहीं कूदूंगा भैया, ऐसे ही फालतू में कूदू। तो हम लोग सब वो एक इकट्ठा उसके इर्द गिर्द खड़े होके देखते हैं कि कैसे देख वो जमुरा कैसे कूद रहा है, बंदर है साहब। और जब हमको बोला जाता है कूद बेटे कूद, 8 से 9 कूद, सॉरी 8 से 5, 8 से 5 कूद ऑफिस में, बिना प्रश्न पूछे कूदते फांदते रहते हैं यहां। तो सब जमुरे हैं। जब तक हम ये प्रश्न नहीं पूछते कि क्यों कूदना है, तब तक हम लोग सब कौन है? और मदारी कौन है? प्रकृति। गड़गड़ गड़गड़ डमरू बजाकर हमको जमुरा बनाए हुए। थोड़े प्रश्न और ले लेते हैं। Can you come home for a party? क्या प्रश्न रहता है? कब आना है भाई बताओ। अब ये प्रश्न देखो, Can you come to temple for chanting? That too in the morning. भैया क्या हो गया तेरे को अचानक? चैंटिंग मंदिर में सुबह, है ना? तो हम वाई पूछते हैं, ये प्रश्न भी पूछते हैं हम वाई, लेकिन ऐसे टॉपिक्स में हम पूछते हैं। तो आजकल आप देखो कि कलयुग में क्यों बताया गया प्रायण अल्प आयुष सभ्य, सब कुछ मंद है, स्मृति, बुद्धि, यहां तक कि जो प्रश्न, अभी मैं हाल ही में दिल्ली में था, तो दिल्ली में एक प्रोग्राम मैंने किया, तो वहां पर उन्होंने मुझे टॉपिक दिया था भगवत गीता में जो शरणागति के बारे में बताया उस पर आप कहिए। तो शरणागति पे मैं लेक्चर दे रहा था और पूरा इंटेंस लेक्चर था शरणागति के ऊपर। पूरे ऐसे शरणागति टॉपिक के इंटेंस लेक्चर के बाद एक व्यक्ति आके मुझे प्रश्न पूछता है। अब देखो यहां से समझ में आता है कि आजकल लेवल क्या है श्रोताओं का। प्रश्न पूछता है, प्रभु जी मुझे बहुत सालों से क्वेश्चन था, पूछूं आपको? मैंने कहा बहुत सालों से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, है ना? बहुत सालों से क्वेश्चन था। मैंने कहा पूछो, अगर भगवान गीता भीम को सुनाते तो? अब इसको कहते हैं क्या लेवल है देखो इंटेलिजेंस का। शरणागति का पूरा लेक्चर सुनने के बाद उसका कोई प्रश्न नहीं, पता नहीं समझ में आया कि नहीं उसको। उसके बाद उसका प्रश्न कि भगवत गीता यदि भीम को सुनाते भगवान तो क्या होता? मैंने कहा जो भी होता तू तो वैसे का वैसा ही रहता। तो मुझे याद है एक बार हमारा सुबह का संडे का भागवतम क्लास चल रहा था, एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, आदमी और इंसान में क्या अंतर है? आदमी और इंसान में क्या अंतर है? तो जैसे एक बार एक क्लास में एक टीचर ने प्रश्न पूछा, इफ द शिप्स आर सिंकिंग इन द पैसिफिक ओशन एंड द फ्रॉग्स आर क्रोकिंग इन द वेल एंड पोटेटोज आर 5 रुपीज किलो, देन व्हाट इज माय एज? कैसा लगा क्वेश्चन? Ships are sinking in Pacific Ocean, frogs are croaking in the well, potatoes are 5 rupees kilo, what is my age? तो एक बच्चा खड़ा हुआ बोला, मैडम योर एज इज 32। वो जो उसने उत्तर भी दे दिया तो बहुत खुश हो गई, उसका एज 32 था वास्तव में। उसने कहा वेरी नाइस, शाबाश, हाउ डिड यू नो? तो बोलता है माई सिस्टर इज 16 years old एंड शी इज हाफ मैड। तो ये कलयुग के लेवल हैं कि पता लगा आपने किसी को पूरा 18 अध्याय सुना दिया और पूरे 18 अध्याय सुनने के बाद वो यही प्रश्न पूछेगा कि भगवान ने गीता रावण को क्यों नहीं सुनाई। तो यहां पर अर्जुन का जो प्रश्न कि वैराग्य या ये युद्ध, यहां से समझ में आता है कि भगवत गीता का लेवल क्या है। हमको जो ये स्क्रिप्चर मिला है, ये स्क्रिप्चर किन दो इंटेलिजेंट बीइंग्स के बीच का वार्तालाप, ये समझ में आना चाहिए हमको। जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म के अंदर भगवत गीता की शुरुआत होती है एक ऐसी संस्कृति से जहां पर हम, जिसको हम कह सकते हैं कि द मोस्ट रिफाइंड लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो इसलिए एक होता है मॉरल डिलेमा और एक होता है एथिकल डिलेमा। मॉरल डिलेमा क्या होता है? चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि हां ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, इसको कहते हैं मॉरल डिलेमा। परंतु जो एडवांस लेवल के लोग होते हैं उनके अंदर कौन सा डिलेमा आता है? उसको कहते हैं एथिकल डिलेमा, चूजिंग बिटवीन टू राइट थिंग्स। तो यहां पर अर्जुन का वो लेवल, इंटेलेक्ट का वो लेवल अर्जुन का, कि अर्जुन यहां पर वैराग्य और उनके स्वधर्म के बीच का ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहां से समझ में आना चाहिए कि यदि प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट है तो उत्तर देने वाले व्यक्ति कितने इंटेलिजेंट होंगे। ये फर्स्ट सेक्शन में समझ में आ रहा है, तीसरा अध्याय चल रहा है अभी तो केवल। तो हमने इस सेक्शन में डिस्क्राइब किया था कि जानलेवा बीमारी सबसे बड़ी कौन सी है आजकल, एड्स। क्या फुल फॉर्म है इसका? हाँ, परंतु यहां पर इससे भी जानलेवा बीमारी, उसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इंटेलिजेंस डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कि जहां पर इंटेलिजेंस की डेफिशिएंसी हो रही है, और वो सबसे भयावह चीज है, क्योंकि वो डेफिशिएंट होने की वजह से जो मन है उसको कंट्रोल में करने के लिए कोई नहीं है, और मन अनकंट्रोल्ड है तो फिर इंद्रियां अनियंत्रित तो सब जगह पाप ही पाप दिख रहा है। तो वास्तविक बीमारी कौन सी है एड्स का, असली फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस इज गेटिंग डेफिशिएंट। तो इसलिए हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं ये, एक होता है इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस या आईक्यू जिसको बोलते हैं, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, और एक है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो हमारे प्रश्नों से हमें समझ में आ जाएगा कि जैसे जानवर जो हैं, जानवर वो जानते हैं कि क्या करना है, उनको पता है सुबह उठते ही खाना है, सोना है, मैथुन करना है, अपनी रक्षा करनी, उनको पता है क्या करना है। मनुष्य जब उसको, उस जीव को मनुष्य योनि दी जाती है तो मनुष्य उसको कैसे करना है ना, मनुष्य की शुरुआत कैसे होती है कि वही चार चीज उसको कैसे करना है, और सबसे उत्तम श्रेणी का मनुष्य कौन है, क्यों करना है। सो एनिमल्स नो व्हाट टू डू, ह्यूमन बीइंग्स दे बिगिन टू नो हाउ टू डू, बट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स आर व्हाई टू डू दैट क्वेश्चन। व्हेन वन स्टार्ट्स आस्किंग देन ही इज कंसिडर्ड टू बी एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग। व्हेन ही इज आस्किंग द क्वेश्चंस व्हाई आई शुड ईट, Why I should sleep? Why I should do anything in this world? इसको कहते हैं spiritual intelligence या spiritual quotient. अब next section, भगवान ने art of balancing का seminar दिया, कौन से verses से? 3.3 से 3.9, path of moderation. तो balancing, यहां पर balancing का अर्थ क्या होता है कि जहां पर आप दो opposites को देखो और उसमें आपको balance करना है। Balancing always means to balance between two extremes. तो यहां पर active work, अर्जुन का प्रश्न था, तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि active work के साथ कोई व्यक्ति detached कैसे रह सकता है। तो भगवान ने उसका निष्काम कर्म योग बताया कि जब तुम उन कर्मों को मेरे लिए करोगे या उसके फल की इच्छा न करते हुए करोगे तो कर्म भी होगा और तुम उसमें आसक्त भी नहीं होगे। तो इसको कहते हैं आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। इसलिए भगवद गीता का निचोड़ है कि न तो कोई चीज को आपको अधिक में करना है, न कोई चीज को बहुत कम में करना है, उसको संतुलित तरीके से करना है। अपना कौन सा है श्लोक? Not to sleep too much. युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्म स चेष्टत। कि हर चीज, चाहे आहार हो, चाहे निद्रा हो, चाहे मनोरंजन, जो भी कुछ हो, भगवत गीता का सिद्धांत है बैलेंस इट, संतुलित तरीके से की जाए। तो इसमें मैं सोच रहा था कि अर्जुन और कृष्ण इन्होंने सेम वर्ड्स यूज किए, परंतु जैसे कि बैलेंस्ड अप्रोच क्या कहते हैं कि वही काम परंतु दृष्टिकोण उसका आप बदल दो तो आप बैलेंस्ड पाथ पर आ जाते हो। तो अर्जुन और कृष्ण के समान शब्द कौन से? ये शब्द। अर्जुन ने भी ये दो शब्द इस्तेमाल किए, भाग लो। भगवान कृष्ण ने भी ये दो शब्द इस्तेमाल किए। दोनों में अंतर क्या है? अर्जुन जो बोल रहे थे भाग लो मतलब रणभूमि से भाग लो, और भगवान भी यही बोल रहे हैं। पूरी गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं? अर्जुन भाग लो। जब एक्सप्लेन करते हैं तब समझ में आता, नहीं तो हम भी समझेंगे अरे भगवान भी बोल रहे हैं चलो भागो। तो हालांकि ये खाली शब्दों का हेर फेर होगा परंतु सिद्धांत वही है। अर्जुन उन्हीं शब्दों को अलग तरीके से या गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे और भगवान ने उन्हीं शब्दों को ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया जो कि बिल्कुल विपरीत। वही दो शब्द हैं, अर्थ बिल्कुल विपरीत है, रन अवे पार्टिसिपेट। तो यही है आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। भगवान ने जो इस श्रृंखला में, श्लोकों की श्रृंखला में जो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग या पाथ ऑफ मॉडरेशन का अर्जुन के ही शब्द इस्तेमाल किए और कहा कि हाउ टू बैलेंस बोथ वैराग्य एंड वर्क। अब कृष्णाज ब्रॉड हार्टेडनेस वर्सेस 10-16 जहां पर भगवान ने कर्मकांड की भी थोड़ी सी छूट दे दी कि यदि कोई व्यक्ति कर्मकांड में भी स्थित है तो वहां से भी तीन गुणों से ऊपर वो व्यक्ति कैसे कर्मयोग में स्थित हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे उन तीन गुणों के अधीन वो जो कर्मकांड की विधि का पालन करेगा तो उसे समझ में आएगा कि इन तीन गुणों के परे है शुद्ध सत्व। तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण के परे है शुद्ध सत्व, और शुद्ध सत्व के स्तर पर फिर वो निष्काम कर्म योग में स्थित हो पाएगा। तो भगवान ने इस सेक्शन में अपनी उदारता दिखाई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन इस अध्याय का। मैं कहूंगा कि इस अध्याय का जो मर्म, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन, जैसे सैंडविच का सबसे जो स्टफिंग बीच में होता है ना, वैसे इस अध्याय को यदि हम सैंडविच की तुलना करें तो सबसे बीच में भगवान ने सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स अर्जुन को दिए, प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप। तो भगवान ने इस सेक्शन में अर्जुन को भारत नाम से पुकारा है, तो इसका मैं कनेक्शन ढूंढ रहा था। बहुत से हमारे अलग अलग टीकाकार उन्होंने टीका दी है इसके ऊपर। तो एक रिसेंट सर्वे हुआ है अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके संदर्भ में, तो जो अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं ये उनका रिसर्च फाइनलाइज हुआ। तो जापानीज के विषय में उनका सर्वे निकला, जापानीज पीपल आर गुड एट टीम वर्क, अमेरिकन्स आर गुड एट मार्केटिंग स्किल्स। वो कुछ भी बेच सकते हैं, उनके अंदर वो मार्केटिंग स्किल्स हैं। ब्रिटिशर्स दे आर गुड एट मैनरिज्म्स, फ्रेंच दे आर गुड एट रोमांस, जर्मन्स उनकी पंक्चुअलिटी, मैंने देखा है वहां पर ट्रेन का टाइम अगर है 9:10 तो 9:10 आप घड़ी सेट कर सकते हो, ट्रेन उसी टाइम पे वहां पे प्लेटफॉर्म पे आएगी। कई बार इंडिया में होता है 9:10 पे आती है लेकिन दिन चेंज हो जाता है। चाइनीज हाउ टू कॉपी। जैसे एक गुजराती भाई और एक चाइनीज, उनकी दोस्ती हो गई, तो हर साल मिलते थे। तो एक साल हुआ ऐसा कि वो जो चाइनीज था उसकी बीवी मर गई। तभी इनको समझ में नहीं आया कि कैसे सांत्वना दें, कंडोलेंस, चाइनीज है। तो इन्होंने उसको कहा कि क्या करें यार, अब चाइनीज थी, कितनी चलती। हा? बुरा मत मान, ऐसे बोलते ना श्रद्धांजलि के समय, तो ऐसे भी चाइनीज थी, कितनी चलती। सो चाइनीज आर फेमस फॉर हाउ टू कॉपी। और इनके सर्वे में इंडियंस के विषय में क्या, दे हैव द क्वालिटी और दे शुड बी हैविंग द क्वालिटी ऑफ हाउ टू लीड। तो हम सीना तान के अब खड़े होके बोलें, इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है। हमको जो संस्कृति भगवान ने दी है इधर भगवद गीता के द्वारा, वो अगर हम पालन करेंगे तब जाकर दैट वी विल बी पीपल हु विल नो हाउ टू गिव डायरेक्शंस, हाउ टू लीड। तो इसलिए मैं वो जो हमारे टीकाकार अलग अलग प्रकार के जो हैं भगवद गीता के ऊपर सेक्शन के ऊपर, जिन्होंने कहा है कि भगवान ने अर्जुन को भारत पुकारा है उन श्लोकों में, तो एक दृष्टिकोण से हम जो भारत देश में पैदा हुए भारतीय, तो भगवान ने प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप हमको सिखाया है सबसे पहले। तो हमने इसकी चर्चा की थी कि श्रेष्ठ और आचार्य, ये दो शब्द भगवान ने इस्तेमाल किए हैं। तो श्रेष्ठों की परिभाषा, आचार्य की परिभाषा, और श्रेष्ठों एवं आचार्यों की जिम्मेदारी। तो श्रेष्ठों की परिभाषा क्या है शास्त्रों के अनुसार, जो आयु ज्ञान बुद्धि साक्षात्कार एवं उत्तरदायित्व में अन्यों से श्रेष्ठ हो वो है श्रेष्ठ। किसमें? आयु ज्ञान बुद्धि साक्षात्कार उत्तरदायित्व। केवल जो एक बल्ला उठाकर बॉल मार दे या कोई कैमरा के सामने नृत्य कर ले, कोई सेलिब्रिटी बन जाए, वो श्रेष्ठ नहीं है शास्त्रों के अनुसार। तो श्रेष्ठ की परिभाषा ये बताई गई है। और आचार्य की परिभाषा, जो अपने वचनों आचरणों एवं उदाहरण से जन साधारण को सिखाए, वो है आचार्य। आचरति इति आचार्य। तो भगवान ने जब अर्जुन को श्रेष्ठ आचरण करने के लिए कहा, तो भगवान अर्जुन को लीडरशिप प्रिंसिपल सिखाते हुए क्या बताए कि अर्जुन तुम्हें न केवल श्रेष्ठ बनना है बल्कि तुम्हें आचार्य बनना है। और यहां पर श्रेष्ठ का अनुवाद किया गया है जिसको कोई पद मिला है, परंतु आचार्य कौन है? जो उस पद पर अपने आचरणों से उस पद की श्रेष्ठता सिद्ध करता है वो है आचार्य। तो मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि किसके चरण स्पर्श करने चाहिए, तो उत्तर में हमने कहा कि चरण उनके स्पर्श करने चाहिए जो अपने आचरणों से अपने आप को सिद्ध करते हैं, जो अपने आचरणों से अपने वास्तविक स्थिति को सिद्ध करते हैं उनके चरण छूने चाहिए। तो ये एक स्लाइड हमने यूज किया था कि आचार्य का अर्थ है मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना मनस्न्यत वचस्न्यत कर्मण्यत दुरात्मना। महात्मा कौन है? जिसके वचन, जिसके विचार और जिसके कर्म वो एक समान हो, वही बोलता है जो सोचता है और वही करता है जो बोलता है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप में हमने ये महत्वपूर्ण श्लोक लिया था कि शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ कौन है, ये नहीं कि कोई इलेक्शन में जीतकर कहीं नेता बन गया वही श्रेष्ठ है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि श्रेष्ठ कौन है, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तत् स्यान् न पतिश्च स्यान् न मोचयेत् यः समुपेत मृत्युम्। वन हु कैनॉट डिलीवर हिज डिपेंडेंट्स फ्रॉम द पाथ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ शुड नेवर बिकम स्पिरिचुअल मास्टर फादर हस्बैंड मदर और वर्शिपेबल डेमीगॉड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग श्लोक है श्रीमद भागवत का ये, जहां पर सबको श्रेष्ठ पद दिया गया है, चाहे कोई माता पिता हो, चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई देवता हो, हम सब किसी न किसी श्रेणी में किसी न किसी तरीके से किसी से श्रेष्ठ हैं। और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी, कौन सी जिम्मेदारी, टू फ्री द डिपेंडेंट्स फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये जिम्मेदारी है श्रेष्ठ के ऊपर। इसलिए हमने लीडर इसका एक एक्रोनिम बनाया था कि ये सेक्शन में भगवान ने जो लीडरशिप के प्रिंसिपल्स बताए हैं तो वो प्रिंसिपल्स का एक एक्रोनिम बनाया था। L स्टैंड्स फॉर बीइंग लॉयल, E स्टैंड्स फॉर बीइंग एग्जेम्पलरी, A अकोमोडेटिंग, D डिपेंडेबल, E इक्विपॉइज्ड, R stands for respectful. So a true leader should have these qualities. Then according to third chapter of Gita, he becomes a true leader. Or last section mein, obstacles coming in the way while following the principles of detached work, verses 3.36 to 43. और ऑब्स्टिकल्स कौन से, लस्ट एंड एंगर। तो यह काम शत्रु जो अत्यंत दुर्जय है, भगवान ने इसके विषय में बताया कि यदि कोई इस प्रकार का श्रेष्ठ है या सही आचरण करने की चेष्टा भी करता है तो बाधाएं कौन सी आती है, उसके अनर्थों की, काम क्रोध की बाधाएं। और फिर भगवान ने उसका निवारण करने के लिए कहा, कॉन्कर लस्ट बाय स्पिरिचुअल डिलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सावधान आध्यात्मिक बुद्धि। और इसका भी हमने एक्रोनिम बनाया था, ओवरकमिंग लस्ट बाय लस्ट। सो हाउ टू ओवरकम लस्ट बाय लस्ट, एल स्टैंड्स फॉर लव, यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, एस फॉर शेल्टर, टी टॉलरेट। और आपको यदि याद है इस सेक्शन में हमने श्रीमद् भागवत का ही, भगवान श्री कृष्ण का कहा गया एक बहुत ही होप गिविंग वर्स लिया था, जिसमें भगवान कहते हैं, माय डियर उद्धव, इफ माय डिवोटी हु हैज नॉट फुल्ली कॉन्कर्ड हिज सेंसेस मे बी हैरेस्ड बाय लस्टी डिजायर्स, बट बिकॉज ऑफ हिज अनफ्लिंचिंग लव एंड डिवोशन फॉर मी, ही विल नेवर बी डिफीटेड बाय लस्ट एवर। He'll be troubled but never be defeated, भगवान बोल रहे हैं। He will never ever be defeated. तो भगवान यही उद्धव गीता में सुनाए हैं, इसी काम के विषय में भगवान उद्धव गीता में उद्धव को सुनाए। और फिर से जो जो हमने चर्चा किए, पूरा थर्ड चैप्टर का ओवरव्यू आपके सामने है कि ये श्लोक में, ये सेक्शन में भगवान ने क्या प्रिंसिपल्स हमें सिखाए हैं। तो यदि आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिए कि थर्ड चैप्टर हमको क्या दिया है। अब पूरे तीसरे अध्याय का एक अलग दृष्टिकोण से मैंने निचोड़ निकाला कि पूरे तीसरे अध्याय में भगवान ने 6 लेवल्स ऑफ टीचिंग्स दी है, क्योंकि भगवान यहां पर अर्जुन और हम सब के लिए एक टीचर की भूमिका निभा रहे हैं। तो सबसे पहले लेवल विद्या, नॉलेज। विद्या के पश्चात विचार, कि जैसे कि अर्जुन के इंटेलिजेंस का लेवल हमने देखा, तो भगवान इस तीसरे अध्याय से हमको ज्ञान के द्वारा विचारशील बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब ज्ञान हमको प्राप्त होता है तब हम सही विचार कर सकते हैं. सो नॉलेज मेक्स अस थॉटफुल. अवर थॉट्स विल बी इन राइट डायरेक्शन व्हेन देयर इज प्रॉपर नॉलेज. सो विद्या के पश्चात विचार, विचार जब हमारे बराबर होंगे तब हमारे अंदर आएगी विवेक बुद्धि. विवेक बुद्धि का अर्थ है डिस्क्रिमिनेशन. और यहां पर हम कौन से लेवल के डिस्क्रिमिनेशन की चर्चा कर रहे हैं? एथिकल डिस्क्रिमिनेशन, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू राइट थिंग्स. आफ्टर विवेक विनय. विनय का अर्थ है ह्यूमिलिटी. तो ह्यूमिलिटी साथ साथ होनी चाहिए. हम श्रेष्ठ हैं परंतु उस श्रेष्ठ पद पर रहकर हमें हमारे हृदय में सबसे विनयशील भावना होनी चाहिए और विमल. और वो विनयशील भावना से हमारा हृदय जो है वो मल से दूर होगा. जो मल कौन से हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, ये सारे जो मल हैं, इससे जो छुटकारा जब हम प्राप्त करेंगे तो उसको कहेंगे विमल और अंततः विमुक्ति. तो पूरे तीसरे अध्याय का ये अलग दृष्टिकोण से पूरा निचोड़ है, सारांश है कि भगवान ने हमें विद्या से विमुक्ति की जो सीढ़ी है इस सीढ़ी पर लेकर गए हैं. अब गीता महात्म्य से तीसरे अध्याय का जो कोई श्रवण करता है, केवल तीसरे अध्याय का श्रवण करने से क्या फलस्तुति, क्या लाभ हमें होता है? गीता महात्म्य, गीता महात्म्य पद्म पुराण का एक भाग है जहां पर भगवान शिव जी पार्वती को हरेक गीता के अध्याय का क्या महत्व है वो बताए हैं. तो तीसरे अध्याय की कथा इस प्रकार से है कि एक ब्राह्मण था जड़ नाम का, और ये ब्राह्मण पैदा हुआ था एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण परिवार में, परंतु कुसंगति के वजह से ये ब्राह्मण ये पाप में लग गया. जैसे अजामिल, तो वैसे ही ये जड़ ब्राह्मण ये पाप में लग गया, अलग अलग प्रकार के पाप करने लगा. और ऐसा हुआ कि एक दिन ये पाप का धन लेकर अपने घर आ रहा था, तो रास्ते में कुछ लुटेरों ने धन लूट लिया और इसको जान से मार डाला. तो जब इस ब्राह्मण को जान से मार डाला तो क्योंकि इसने इतने पाप किए थे तो मरते समय केवल वो अपने पाप कृत्यों को ही याद करते करते मर गया, तो उसको भूत की योनि मिली, वो भूत बन गया. अब इसके घर का इनका जो पुत्र था वो प्रतीक्षा कर रहा था कि पिताजी कब आएंगे, कब आएंगे, पिताजी आए नहीं, तो ढूंढने के लिए इनका पुत्र निकल पड़ा और उस जगह पर पहुंचा जहां पर इनके पिता की मृत्यु या उनका कत्ल हुआ था. तो वहां पर एक व्यक्ति ने कहा कि भाई ये ऐसे ऐसे तुम्हारे जो पिता, इनको लुटेरे ने जान से मार डाला इसी पेड़ के नीचे. तो वो विलाप करने लगा पुत्र, और उसको फिर इस व्यक्ति ने कहा, ज्ञानी व्यक्ति था, इसने कहा कि तुम्हारा जो पिता है वो भूत बन गया है. तो वो बेटा अब वहीं से उसने गया जाने का सोचा कि गया जाकर मैं वहां पर पिंड दान करता हूं और इस भूत की योनि से मेरे पिता को मुक्त कराता हूं. तो अगले दिन वो गया के लिए निकलने वाला था और उस शाम वो उस पेड़ के नीचे ही उसने आराम किया और उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे कुछ पन्ने पड़े हुए थे. तो उसने पन्ने उठाए और वो पन्ने थे भगवद गीता का तीसरा अध्याय. बस उतना ही, तीसरा अध्याय उतना ही था. तो उसने वो तीसरा अध्याय पढ़ा और उस पेड़ के ऊपर ही उसके पिता भूत बनकर बैठे हुए थे. तो जैसे ही ये तीसरा अध्याय ये जड़ ब्राह्मण जो भूत बन चुके थे इनके पुत्र ने पढ़ा, तो तुरंत उनको एक वैकुंठवासी का रूप प्राप्त हुआ. उन्होंने उस भूत की योनि में उस पेड़ पर बैठे बैठे अपने पुत्र द्वारा वो उसका पाठ जब सुना तीसरे अध्याय का, तो वो भूत की योनि से मुक्त होकर एक वैकुंठवासी बने। और फिर उन्होंने अपने पुत्र को धन्यवाद दिया और पुत्र को कहा कि अभी तुम्हें गया जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गया से 100 गुना ज्यादा जो प्रभाव या इफेक्ट परिणाम मुझे मिलना था वो मुझे मिल गया है केवल भगवद गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने से। और फिर उन्होंने लिस्ट दे दी कि और कौन कौन से पूर्वज नरक में बैठे हुए हैं हमारे परिवार के, थोड़ा उनके लिए भी ये पाठ आप करो। तो फिर वो घर गए और भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह के सामने उन्होंने एकदम टारगेटेड ऑडियंस के लिए, और वो ऑडियंस कहां थे, उनके सब यमलोक में थे, तो एक एक कर कर वहां से उनकी छुटकारा उनका होने लगा। जैसे ही एक तीसरा अध्याय उनके एक पूर्वज के लिए उन्होंने उसका पाठ किया, तो वहां से वैकुंठवासी बनकर वो वैकुंठ के लिए चले गए, तो यमराज जी देख रहे थे कि अचानक यहां पर स्ट्रेंथ कम हो रही है, ये जा कहां रहे हैं, गायब कहां हो रहे हैं। तो पता लगा कि पृथ्वी पर कोई वहां से ये प्रयोजन कर रहा है। तो फिर यमराज जी इतना प्रसन्न हुए, यमराज जी श्वेत द्वीप गए और यमराज जी भगवान श्री विष्णु से मिले, और उन्होंने भगवान श्री विष्णु को पूछा कि ये क्या हो रहा है, यमलोक में लोग यम यातना भुगतने के बजाय वैकुंठवासी का रूप धारण कर चतुर्भुज रूप धारण कर वो वैकुंठ जा रहे हैं वहां से। तब फिर भगवान श्री विष्णु ने यमराज जी को तीसरा अध्याय सुनाया, और यमराज जी जब तीसरा अध्याय सुने तो यमराज जी इतना प्रसन्न हो गए। तो पद्म पुराण की गीता महात्म्य में ये तीसरे अध्याय का महत्व बताया गया है इस ये जड़ ब्राह्मण की कथा से। तो अब हमें लग रहा होगा कि दो कब आ रहे हैं बाहर हाथ हमारे, हा? बाहर पार्किंग लॉट में आए कि नहीं वैकुंठ में मान। तो पहले हम समझ लें कि बेनिफिट्स ऑफ हियरिंग थर्ड चैप्टर, फ्रीडम फ्रॉम टू थिंग्स, सिंफुल लाइफ एंड घोस्टली एग्जिस्टेंस, जो जड़ ब्राह्मण की कथा है। तो इस भौतिक संसार में हम सब उस जड़ ब्राह्मण की तरह अटके हुए हैं इस जड़ भूमि में। तो क्या है, पाप कृत्य जो जीवन है वो है एक्शन, और घोस्टली एग्जिस्टेंस वो है रिएक्शन। घोस्टली एग्जिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि सब भूत बनकर यहां वहां मंडरा रहे हैं, वो हमें सिंबॉलिकली समझना है, फिगरेटिवली समझना है। घोस्टली एग्जिस्टेंस मतलब कि उसको इच्छा, भूत प्रेत जो होते हैं उनको इच्छा होती है भोग करने की, परंतु शरीर नहीं है, पाप इतना किया है। तो जो बहुत पाप करते हैं इसी जन्म में घोस्टली एग्जिस्टेंस कैसे हो जाता है कि इच्छा बहुत रहती है और इंद्रिय भोग करने की, परंतु शरीर काम नहीं करता। तो आप देखो बुढ़ापे में इच्छा बहुत है, ये कर लूं वो कर लूं, परंतु न बोल पा रहे हैं, न दांत हैं कुछ खा पा रहे हैं, न कुछ सुन पा रहे हैं, परंतु इच्छा अंदर उतनी प्रबल है, जवान इच्छा उतनी जवान है, परंतु शरीर अब पूरा उसकी मरम्मत भी नहीं हो सकती, ऐसा शरीर हो गया। उसको कहते हैं घोस्टली एग्जिस्टेंस, वो भूत प्रेत की योनि है। भूत प्रेत मतलब इच्छा है शरीर नहीं है। तो कलयुग में पाप कृत्य के वजह से घोस्टली एग्जिस्टेंस। तो चैप्टर 3 गीता महात्म्य के अनुसार क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एक्शन एंड रिएक्शन बोथ, पूरा झाड़ू मार के साफ। तो प्रश्न ये है कि ये जो फलस्तुति है, जैसे कि गीता महात्म्य है, भागवत महात्म्य है, तो फलस्तुति का साइंस क्या है, ये क्या है, मार्केटिंग टेक्निक है। क्योंकि कलयुग में हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो मार्केटिंग टेक्निक क्या होती है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और बेनिफिट्स। तो जो मार्केटिंग करते हैं वो लोग क्या देते हैं हमको प्रोडक्ट के बारे में, पहले इंफॉर्मेशन देते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा ऐसा, इसका इंफॉर्मेशन, हाँ आप इस्तेमाल करोगे तो ये लाभ आपको होंगे, ये साबुन लगाओगे तो इतना गोरा दिखोगे, ये साबुन नहीं लगाओगे तो इतना काला दिखोगे, ये भी बताते हैं, मार्केटिंग टेक्निक है। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना क्या होती है, वो कैलकुलेटिव मेंटल ना, फायदा नुकसान फायदा नुकसान। तो यहां पर एक आध्यात्मिक तरीके से इन कथाओं के द्वारा हमको ये न के न प्रकारेण भगवत गीता के ये अध्याय पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि क्या इंफॉर्मेशन क्या है उस अध्याय का, और फिर उस अध्याय को पढ़ने का बेनिफिट्स क्या है। लेकिन किस तरीके से श्रवण करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। अभी ये डिसाइड करेगा कि हम वैकुंठवासी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो हाँ, गीता के तीसरे अध्याय का पाठ, चलो अरे हम तो कितने वेडनेसडे पाठ किए हैं, है ना, लेक्चर से पहले सब लोग जोर जोर से हम लोग पाठ करते ना, तो कितना हमने तो पूरा कंफर्म सीट तो कर लिया अभी तक। और पूरा कोई है यहां पर जो पहले अध्याय से लेके 43rd श्लोक तक अटेंड किया है जिसने? आपने पूरा अटेंड किया 43 श्लोक? मैंने भी किया। तो हम बोलेंगे कि अरे भाई मैंने तो पूरा 43 जितना सब पॉइंट्स वॉइंट्स निकाल के सब उसका डाइसेक्ट किया हुआ श्लोक सब देखा है मैंने, सुना है। परंतु यहां पर हमको बताया जा रहा है कि चार प्रकार के श्रवण होते हैं, उनमें से हमने यदि ये कोर्स पूरा नहीं किया है ये श्रवण का, तो फिर अभी दिल्ली दूर है या वैकुंठ दूर है। सबसे पहला टाइप हियरिंग का, उसको कहते हैं इंसिडेंटल हियरिंग। इंसिडेंटल हियरिंग मतलब चलते चलते हमने कुछ सुन लिया, ऐसे ही कोई रास्ते से गुजर रहा था, प्यास लगी, अरे देखा यहां पे कूलर है, पानी है, आ गया पानी पीने के लिए, यहां पे खड़ा हो गया बाहर, क्या चल रहा है अंदर, इतने लोग बैठे हुए क्या चल रहा है, सुन लिया उसने। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं विरक्ति के विषय में दूसरे अध्याय में, अरे दूसरा अध्याय भगवत गीता, उसको कहते हैं इंसिडेंटल हियरिंग, पानी पी के चला जाता वो। तो कई बार हमारा हियरिंग इस प्रकार का हियरिंग होता है, कलयुग में अधिकांश इंसिडेंटल हियरिंग होता है कि हम लोग अगर प्रवचन में बैठे भी हैं तो हमारा मन कहीं कूलर में, कहीं वो प्रसादम हॉल में, कहीं लॉन में, कहीं वो गाय के पास, कहीं बाहर यहां वहां घूम रहा है। और बीच बीच में जब जागृत अवस्था में यहां पर देखते हैं कि कुछ चल रहा है स्लाइड, कुछ है ना अलग अलग रंगों में, कोई एरो यहां से आ रहा है वहां से आ रहा है, कोई वीडियो चालू होता है, तो फिर अरे अच्छा ये बताया है, अच्छा, अच्छा भागवत का श्लोक, अरे लेकिन गीता सुना रहे थे भागवत का श्लोक, शुरुआत तो गीता के श्लोक से की थी, तो भागवत 11वां अध्याय, उसको बोलते हैं इंसिडेंटल हियरिंग। जैसे कि श्रीमद् भागवत में भी प्रथम स्कंद में आप देखो सुखदेव गोस्वामी या हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में रासलीला के बारे में, फर्स्ट कैंटो में रासलीला के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देंगे, उसको कहते हैं इंसिडेंटल हियरिंग। दूसरे टाइप की हियरिंग है पर्पसफुल हियरिंग। अब हम ठान के आए हैं, जैसे किताब भी हम खोलते हैं, जैसे कई बार हमारी रीडिंग कैसे होती है, पूरे बुक शेल्फ में कौन सी एक किताब अच्छी दिख रही, कवर पेज को किसका अच्छा है वो निकाल लेते हैं, फिर थोड़ा यहां वहां पन्ने पलटते हैं, कौन सा अच्छा चित्र अच्छा दिख रहा है, इसके बगल में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। लेकिन पर्पसफुल हियरिंग क्या है, जब हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हैं उसको, एक मन में ठान कर कि मुझे भगवत गीता का प्रथम अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय इस प्रकार से मुझे पढ़ना है, उसका श्रवण करना है, उसको बोलते हैं पर्पसफुल हियरिंग। इसके ऊपर का जो लेवल है हियरिंग का, उसको बोलते हैं मेडिटेटिव हियरिंग, कि जो हमने श्रवण किया है उस पर मनन करना, कि हमने गीता का तीसरा अध्याय 1.5 साल तक श्रवण किया, अब जाकर उस पर मनन करना कि कितने सेक्शंस आज मैंने सुने, कितने 5 सेक्शंस, एक एक सेक्शन में भगवान ने क्या बताया, क्यों बताया, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बताया। और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ हियरिंग जो हमको वैकुंठ वास दिलाएगा वो है एप्लीकेटिव हियरिंग। एप्लीकेटिव हियरिंग मतलब हमने जो ध्यान से श्रवण किया उस पे मनन किया और उसको अपने जीवन में उतारा, एप्लीकेशन। जब उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं तो उसको कहते हैं एप्लीकेटिव हियरिंग। और जब इस प्रकार का श्रवण हम करेंगे, चाहे गीता का कोई भी अध्याय हो, तब जाकर जो फलस्तुति बताई है वो फलस्तुति वो फलोन्मुख होगी तब जाकर। और इसलिए ये जो हम गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य बताए हैं, ये सब का निचोड़ यही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब चौथा अध्याय हम प्रारंभ करेंगे अगले साल। घबराइए मत, अगला साल अगले हफ्ते ही शुरू होने वाला है। तो 1 जनवरी, देखियो क्या सेटिंग हुई है कि 1 जनवरी से 4th चैप्टर, 1 जनवरी 2014 से हमारा 4th चैप्टर शुरू होने वाला है। और 4th चैप्टर का शीर्षक है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है जहां पर भगवान क्या बताने वाले हैं मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो वो सुनने के लिए आपको अगले साल 1 जनवरी बुधवार इसी समय इसी स्थान पर जल्दी उठकर, 31st पता है पिछले दिन 31st होगा, लेकिन तरोताजा होकर आ जाइए, शाम का कार्यक्रम है, घबराइए मत। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, निधाई गौर प्रेमानंदी।
हरे कृष्णा। आज का जो प्रसाद है वो